Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी में संयम और पेशेंस, ये दो ऐसे पहलू हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। चाहे हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जिंदगी में किसी भी राह पर चलने चाहते हैं, लेकिन मंजिल जरूरी नहीं कि एक झटके में आपको मिल जाए। उस मंजिल की राह पर चलते चलते पेशेंस एक ऐसा साथी है आपका जो सदा आपका साथ निभाएगा, अगर आप उसका साथ निभाएंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं बीके चिन्मय भाई जी। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो।
ओम शांति, थैंक यू
ब्रदर। हम बात कर रहे हैं लॉज की। हम हर एक दिन एक नए लॉ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हम अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते जा रहे हैं।
ट्रू।
ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंस को खो देते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं आगे क्या है और मैं बैठ जाता हूँ, थक जाता हूँ, तो मैं अब कुछ और नहीं कर सकता। ऐसे सिचुएशन में कौन सा लॉ मुझे हेल्प करेगा?
लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग।
ओके।
इसका मतलब है कि पहले मैंने बीज बोया और उसके बाद मैंने फल पाया, राइट?
ओके।
और ये लॉ इतना, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट लॉ है।
okay.
क्योंकि ये लॉ इतना पावरफुल है कि ये मुझे एक एब्सोल्यूट पॉइंट पे ले जाता है जहां पे मैं एकदम पीसफुल फील करूं।
okay.
क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर फल चाहिए तो मुझे सीड्स को बोना है, राइट? वो फर्स्ट स्टेप है। तो वो उससे क्लैरिटी मिली कि अभी मुझे सीड्स बोना है, अभी जो समय चला। अगर कोई फार्मर होता है तो उसको ये पता है कि अभी जो सीजन है वो सीड्स बोने का है, या अभी जो सीजन है वो हल लेके फिर सीड्स बोना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, मैं उस सीड्स को पानी पिलाऊंगा, उस सीड्स को फर्टिलाइजर्स दूंगा, तब जाके वो जर्मिनेट होगा। और खुशी की बात यह है कि मैं अगर एक सीड बोऊंगा तो वो एक सीड बाहर नहीं निकलेगा, वो मल्टीपल फोल्ड्स में निकलेगा, राइट?
वाओ।
तो जितना मैं सो करता हूँ, जितना मैं बीज बोता हूँ, उससे हजार गुना मुझे रिजल्ट मिलता है। पर मुझे बात ये याद रखनी है कि मैं सिर्फ एक सीड को ना बो करूं, मैं कई सारे सीड्स को एक साथ सो करूं, ताकि मुझे सिर्फ एक सीड पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, राइट? कभी कभार क्या होते हैं कि हम सिर्फ एक ही सीड को सो करके फिर उसी में अड़े रहते हैं। और कई कभार तो क्या करते हैं कि वो एक सीड मैंने सो कर दिया, फिर उसको खोल के देखता रहता हूँ कि ये जर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ, उगा कि नहीं उगा। तो ये प्रोसेस से क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा और वो सीड जो है वो भी व्यर्थ जाएगा, राइट?
अच्छा।
तो मुझे पता है कि 3 महीने 4 महीने उसका टाइम है, उसको टाइम मैं देता हूँ, उसको पानी पिलाता हूँ, फर्टिलाइजर देता हूँ, तो फिर मुझे ये फल जो है वो मिलेगा। और फिर कभी क्या होता है कि सीजन के कारण या फिर किसी और नेचुरल कैलमिटीज के कारण जो मैंने सीड्स बोया उसका फल डिस्ट्रॉय हो गया या फिर उसका फल मुझे नहीं मिला, राइट? होता है ऐसा।
yeah.
और ये भी एक नेचर का, एक इस प्लैनेट का रूल है ऐसा।
yeah.
ये प्लैनेट ही ऐसा है कि कभी कभार आपको जो चाहिए वो कभी कभार नहीं मिलेगा, राइट?
yeah.
तो भी क्या बात हो गई, हम फिर से क्या नहीं बो सकते? जरूर बो सकते हैं, राइट? yeah. तो अगर इस चीज को मैं जान लूं और इस चीज को मैं अपने जीवन का एक हिस्सा बना लूं, तो मैं जो अनगिनत बार वो कंफ्यूजन में आ जाता हूं या फिर एंजाइटी में आ जाता हूं कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, वो नहीं होगा,
राइट? yeah.
मैं एक पीसफुल सिचुएशन में होऊंगा और मुझे पता है कि मैंने अभी बीज बोया, अभी मेरा समय है उसको फर्टिलाइज करने का, उसको उसकी देखभाल करने का, और जब समय आएगा तब उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। तब मैं एकदम शांत स्वरूप में आ जाऊंगा और मुझे खुशी भी होगी अंदर ही अंदर क्योंकि मुझे जो एक सीड है उसका हजार गुना मिलने वाला है।
दिस इज अमेजिंग दादा। जब हम बात करते हैं यही सुन, मैं जब बीज बोने की अगर बात करूं तो कई बार जो मुझे लग रहा है कि उसमें एक और गुण ऐड करने की जरूरत है वो है ट्रस्ट की।
एब्सोल्युटली सो ट्रू।
जब हम पेशेंस की बात करते हैं कि पेशेंस रखना है मुझे, वो चार महीने तक उसे छोड़ देना है अपने हाल पे, बस उसे वन साइडेडली देते रहना है और एक समय आएगा कि मेरा जो वो ट्रस्ट है उस पर, उस बीच पर, वो एक पेड़ का रूप ले लेगा। उसी तरह से जिंदगी भी है मेरे हिसाब से ब्रदर, कि हम जब रिलेशनशिप्स की बात करें या गोल्स की बात करें या स्पिरिचुअलिटी की भी बात करें तो पेशेंस इज द की, पर पेशेंस के साथ में ट्रस्ट ये उसका पिलर है। आपकी क्या राय है?
आई एग्री 100%। और वो ट्रस्ट इस लॉ को जानने से हमें ऑटोमेटिक मिलता है।
ओके
राइट कि जब मैं बीज बोऊंगा तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा। राइट और जब मैंने बीज बोया और मुझे मेरे में फेथ है कि ये ग्रो होगा तभी वो मैं उसका परिणाम पा सकूंगा।
जी।
और इसका मतलब कि मैं जितने भी पॉसिबल है उतने बीज बोऊं।
yeah,
राइट अनगिनत बीज बोऊं और एक ना एक दिन आएगा कि उनमें से एक बीज भी अगर वो पेड़ बन जाए तो जितने भी बीज बोए है उसका मल्टीपल फोल्ड मेरे को रिजल्ट मिलेगा। How beautiful.
This is superb. Brother, I remember आपने बहुत टाइम पहले एक एपिसोड में बात की थी कोई ट्री की जो 6 महीने तक कुछ इंचेस ही ग्रो होता है। अगर आप वो फिर से बोल सके, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा है उनके लिए ये एक आई ओपनर एग्जाम्पल है।
Absolutely. जो चाइनीज बैम्बू होता है
जी,
उसका ट्री सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसको बोने के बाद 4 साल तक अगर आप उसको पानी पिलाते रहो, फर्टिलाइजर देते रहो, फिर भी वो सिर्फ 6 या 7 इंच मैक्सिमम उगता है।
ओके
राइट वेरी स्मॉल। और तब हमें शायद ऐसा लगता है कि अभी ये इतना ही बड़ा होगा, दैट्स इट, ये 4 साल हो गए। पर अगर 5th ईयर अगर आप उसको देखो तो वो सिर्फ 1 साल में 6 इंच से 60 फीट तक उग जाता है।
wow. right? okay.
और ये कितना, मतलब एक एनालॉजी कितना अच्छा है कि शायद हमें कुछ दिन, कुछ पल, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल रिजल्ट नहीं मिलता, पर हम एक ऐसा एक्शन डाल देते हैं, एक ऐसा बीज बो देते हैं जो हमें 5th ईयर में एक्सटर्नल ग्रोथ देता है। राइट इंटरनल ग्रोथ तो हमारा होता ही है, जैसे चाइनीज बाम्बू का इंटरनल ग्रोथ तो होता ही है। राइट जो नजर नहीं आता पर वो होता है। राइट कई कबार ऐसी सिचुएशंस आती है, कोई सेटबैक्स आते हैं जो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर करते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और मैं ऐसा क्या करूं जो ये फिर से ना हो। राइट तो जब मैं ये करता हूं तो मैं इंटरनली ग्रो होता हूं। मेरा अंदर का जो रूट्स है वो पावरफुल हो रहा है। और अगर मुझे बिल्डिंग पावरफुल बनाना है तो उसका फाउंडेशन तो पावरफुल चाहिए ही चाहिए। राइट और जितना पावरफुल मैं फाउंडेशन बनाता हूँ, जितना डीप मैं जाता हूँ अपने आप में और अपने आप को समझने में और अपनी सिचुएशंस को समझने में, उतना ही मैं पावरफुली एक्सटर्नल ग्रो कर पाऊंगा। तो ये अगर मैं समझ जाऊँ तो बहुत ही ईजी रहेगा किसी भी सिचुएशन को डील करने में।
यस ब्रदर, जब हम बात करते हैं किसी चीज को इन्वेंट करने की, साइंटिस्ट के हिसाब से नहीं, जब आप जिंदगी में किसी चीज को इन्वेंट करते हैं, किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको पहले ही सफलता मिल जाए।
True.
कई बार आई थिंक सोइंग एंड रीपिंग का जो ये प्रोसेस है इसके अंदर में फेलियर की भी कई बार प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि वो बीज शायद उतना शक्तिशाली नहीं है, तब उस वक्त मैं उदास हो जाऊं या मैं उस बीज को रिप्लेस कर दूं दूसरे बीज के साथ में, ताकि वो उसे फिर से ट्रस्ट क्रिएट करके मैं उस सीड को ट्रस्ट दूं, क्योंकि एक बार तो मैं फेल हो चुकी हूं, एक बार वो सीड शायद नहीं बोया गया, तो दूसरी बार वो ट्रस्ट बिल्डअप कैसे करें?
यहाँ पे मैं अपने रियल लाइफ का एग्जांपल देना फिर से चाहूंगा कि जब मैं मार्केटिंग करता था अगेन डोर टू डोर, तब मैं ये सोच के नहीं जाता था कि ये सिर्फ एक ही दरवाजा है जो मेरे लाइफ का मेरे को सबसे बड़ा सेल देगा। नहीं, मैं हर एक डोर को एक सीड मानता था कि यहाँ पे मैंने एक सीड बोया, उसके साथ कम्युनिकेट किया, उसको समझाया, और फिर सेकंड डोर, फिर थर्ड डोर, और कभी कोई कोई दिन तो 40-50 डोर्स, अब 200 डोर्स तक मैं करता था जब तक कि मुझे रिजल्ट ना मिले, राइट? और फिर क्या होता था, जो मैंने पिछले दरवाजे खटखटाए थे और उन लोगों से जो बातचीत की थी, उनकी वहां मैं फिर से एक हफ्ते बाद जाता था और उनसे पूछता था कि आपसे जो मेरी पिछले हफ्ते बात हुई थी तो आपको कैसा लगा, आपको क्या महसूस हुआ। तो फिर कभी कभार मुझे उसमें से रिजल्ट मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो द की हियर इज कि सिर्फ एक सीड पे मैं डिपेंडेंट नहीं रहता था, मैं एक ही टाइम पे मल्टीपल सीड्स को बोता था, राइट? और उससे मुझे फिर कॉन्सिस्टेंट रिजल्ट मिलने लगा। क्यों? क्योंकि हर एक हफ्ते मैं जब पहला महीना काम करता था तो मुझे करना पड़ा, फिर क्या होता था कि मुझे सिर्फ अपॉइंटमेंट्स पे ही काम करना पड़ता था कि किसी और को मैंने एक महीने पहले बात की थी तो वो कहते थे एक महीने बाद आना, कोई किसी को एक हफ्ते पहले बात की थी तो वो कहते थे एक हफ्ते बाद आना, तो फिर मेरा काम ऑटोमेटिकली ऐसे सीड्स जर्मिनेट्स होते रहते थे। तो फिर मैं बहुत बिजी रहता था, तब मेरे को सीड्स बोने का टाइम नहीं रहता था, तब मुझे सिर्फ रिजल्ट्स लेने का टाइम मिला, राइट? तो एक समय आपके जीवन में ऐसा भी आएगा जब आपको बोना नहीं पड़ेगा, जो आपने पहले बोया था उसी में से वो फल के सीड्स जो है वो फिर से जमीन में जाएंगे, फिर से वो उगेंगे, फिर से जमीन में जाएंगे, फिर से वो उगेंगे। पर उस समय तक मुझ में पेशेंस होना और मुझ में वो परसिस्टेंट होना और मुझ में वो फेथ होना कि दिस इज पॉसिबल। तो अगर मुझ में ये फेथ होगा कि मैं जब भी एक्ट ऑफ गुडनेस करूँगा, इनफ एक्ट ऑफ गुडनेस करूँगा, तब तक मैं एक नया सीड बो रहा सो कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि मेरे में ये फेथ और ज़्यादा डेवलप होगा, ये परसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी आएगी, और एक दिन ज़रूर आएगा जब मैंने जितने भी अच्छे एक्ट्स किए हैं वो मेरे को रिजल्ट देंगे मल्टीपल फोल्ड्स।
दिस इज सुपर्ब। पर ब्रदर, इसी से मेरा एक सवाल है, जैसे सपोज आजकल यंगस्टर्स की मैं बात करूं कि पैशन बहुत है उनके अंदर, जज्बा भी बहुत है, टैलेंट भी बहुत है, लेकिन कई बार जिस प्रोफेशन को वो चुन रहे हैं उसे वो इतना स्ट्रांगली होल्ड करते हैं कि उन्हें और कोई प्रोफेशन नजर नहीं आता। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि वो प्रोफेशन वो छोड़ना ही नहीं चाहते, वो ट्राई करते रहते हैं सालों तक, फिर एक समय ऐसा आता है जब जिंदगी उन्हें हरा देती है और फिर थक हार कर शायद टाइम भी चला जाता है और फिर उन्हें नई शुरुआत करनी पड़ती है जो बहुत तकलीफ देह होती है। ये जो आप सोइंग की बात कर रहे हैं, मल्टीपल सीड्स की आप बात कर रहे हैं, क्या मैं ये बात अगर कहूं तो ये सही है कि हमें गोल्स में भी ऑप्शंस रखने चाहिए ताकि जब मैं एक चीज मुझे लग रहा है नहीं हो रही है तो उसे छोड़कर, लेट गो करके दूसरी मंजिल की ओर मैं आगे बढ़ पाऊं।
Absolutely.
उससे क्या होगा, उससे मैं स्टक नहीं होंगी और मेरी जो ग्रोथ है वो रुकेगी नहीं और जिंदगी शायद मुझे कुछ और ही देना चाहती है, उस चीज को मैं एम्ब्रेस कर पाऊंगी। Am I right?
Sure. और इसमें मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि अगर मुझे अपना पर्पस क्लियर है तो पर्पस क्या है कि लोगों को मेरी टैलेंट, मेरे काम के जरिए खुशी देना, तो अगर मुझे वो क्लियर है तो फिर मेरे लिए अपने गोल्स में मतलब थोड़ा सा ट्वीक करना वो आसान होगा। और सिर्फ एक ही चीज़ पर मैं डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, राइट? और जैसे आपने कहा, अपनी ज़िंदगी को एम्ब्रेस कर लूँगा। और इससे मुझे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति का एग्जाम्पल याद आ रहा है, उसका नाम है वरुण पृथ्वी, अगर आप शायद जानते हो तो। उसका ये लक्ष्य था कि वो बहुत अच्छा एक्टर बने, राइट? और बहुत सारे उसने ऑडिशंस दिए और बहुत सारे ट्राइज भी किए उसने, और वो फेल हुआ, बहुत फेल हुआ। और फिर लोगों ने उसको ये भी कहा कि तू अभी ट्राई भी मत कर क्योंकि ये चीज़ तेरे लिए नहीं है। पर उसने क्या किया, उसको थ्रू हिज एक्टिंग उसको ये मैसेज देना था लोगों को कि लोग इस दुनिया में अच्छे हैं और हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए, राइट? तो उसने क्या किया, अपना फेसबुक और यूट्यूब सीरीज शुरू किया खुद का, और वो हर हफ्ते किसी एक गरीब इंसान या फिर एवरेज जो कि रोड पर रोड साइड पर कुछ बेचता है, तो उसको जाके उससे जो सारी सामान है, जैसे वो फ्रूट्स बेच रहा है, तो अगर वो एजेड पर्सन है अपने 60s-70s में, तो उससे जो सारी चीजें वो खरीद कर लेता था
जी।
और उसको जो भी पैसे चाहिए वो दे देता था।
ओके।
तो उससे वो इतना फेमस हो गया कि अभी वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड यूट्यूबर्स इन इंडिया में से हैं।
वाओ।
राइट। तो उसने क्या किया, अपना जो मिशन था, जो अपना पर्पस था कि मेरी एक्टिंग के जरिए मैं लोगों को काइंडनेस दू, खुशी दू, वो उसने ट्रू कर दिया किसी दूसरे जरिए से। हाउ कूल।
This is superb. इसी से मेरे दिमाग में एक और एग्जाम्पल आया कि जब हम बात करते हैं एक जोकर की, जोकर का एक पर्पस होता है, एक ही पर्पस होता है, दूसरों को हंसाना। सिर्फ हंसाना नहीं, दिल से हंसाना। उसके लिए कई बार शायद उनकी जिंदगी में तकलीफ भी चल रही हो, शायद उनके पास उतने पैसे भी ना हो, शायद घर में खाना ना हो, फिर भी दूसरों को खुशी देने में उन्हें खुशी मिलती थी। ये एक तरीके का बीज नहीं है, क्योंकि जब हम दूसरों को हंसाते हैं तो हम उनसे दुआएं लेते हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको वो मिल जाता है। जिस तरह से यमा कुमारी का भी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात, कि वो कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो, अपने आप दुआएं आपके जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। जब हम बात करते हैं सोइंग एंड रीपिंग की, ये हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हम जब कर रहे हैं इसके अंदर में, तो उसके अंदर में मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। इसमें आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि किस हद तक दुआएं कमाना ये एक बीज है?
एब्सोल्युटली आई एग्री, क्योंकि मेरा फोकस जो है जब मैं दुआएं कमाने में रखता हूँ तब ऑटोमेटिकली दूसरों को हेल्प करने में रहता है।
करेक्ट।
और जब मैं ऑटोमेटिकली दूसरों को हेल्प करने में फोकस रखता हूँ तो मैं अपनी हेल्प तो ऑटोमेटिकली करता ही हूँ।
करेक्ट।
जैसे हमने पहले बात की थी कि जब दूसरों को हम मदद करते हैं तो हमें खुशी ऑटोमेटिकली मिलती है।
yeah.
हमारे माइंड में वो हैप्पी हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। राइट। तो आई डेफिनेटली अग्री एंड आई फॉलो द सेम फिलोसॉफी कि जितने भी अच्छे बीज हम बोए रोज उतना ज्यादा अच्छा है।
बिल्कुल ब्रदर, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं और इंतज़ार भी बहुत करते हैं, पेशेंस भी बहुत रखते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता और इतना थक जाते हैं हम कि कई बार हम कर्म करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस देना कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज ये चीज़ होने ही नहीं वाली है। इस थॉट के बारे में आपका क्या कहना है?
जितना बड़ा फ्रूट आप चाहते हो उतना थोड़ा टाइम लगेगा। राइट।
वाओ।
जैसे कोई आम का पेड़ है तो आम साल में एक ही बार आता है।
ट्रू।
राइट। कोई बहुत ही अच्छा फ्रूट है तो वो 2-3 साल में एक बार आता है। राइट। तो हर एक फ्रूट का, हर एक चीज का एक सीजन होता है।
yeah.
और वो सीजन आने पर वो आता है। अगर मैं ये एनालॉजी को अपनी लाइफ में ले लूं कि मुझे जो भी फ्रूट चाहिए वो इतना बड़ा है तो मुझे पेशेंस तो रखना पड़ेगा।
ट्रू।
राइट।
बिल्कुल।
और जब वो फ्रूट मुझे मिलेगा तो वो मीठा होगा। जैसे आम का फ्रूट कितना मीठा है, सबको पसंद है। राइट। माय फेवरेट।
माय टू।
तो वैसे ही हमें ये, अगर हम ये पेशेंस रखते हैं
जी।
और हम ये जानते हैं कि ये फ्रूट बड़ा है, मुझे मिलने वाला है, और जब मिलेगा तो इतना मीठा होगा।
yeah.
राइट। और फिर मैं लोगों के साथ भी वो शेयर करूंगा तो उनको भी ये मिठास मिलेगी।
yeah.
तो ये अगेन मैं वो पीस में आ जाऊंगा, फिर से वो सेंटर्ड हो जाऊंगा और फिर से उस चीज की ओर आगे बढ़ पाऊंगा।
yeah.
कि ये मैं कोशिश जो कर रहा हूँ वो मैं जारी रखूँ।
yeah.
वो उसको मैं आगे बढ़ाऊँ, उसको मैं और पानी पिलाऊँ, उसको मैं और खाद डालूं, ताकि जब वो फ्रूट आए तो वो बड़ा आए और वो मीठा आए।
ब्यूटिफुल। आई थिंक भाई जी आज हमने जो बातों पर रोशनी डाली, हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से पेशेंस हमारे जिंदगी को एक नया मायना देता है, किस तरह से ट्रस्ट ये सोइंग और रीपिंग अर्थात जो जैसा हम बोएंगे वैसा ही फल हम पाएंगे, इन दोनों के बीच के कनेक्टिंग पॉइंट्स है, एक है ट्रस्ट और दूसरा है पेशेंस। जब ये दोनों गुण हमारे अंदर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम जिंदगी के किसी भी संघर्ष में सफल होंगे।
एब्सोल्युटली।
थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर योर वैल्युएबल टाइम। ओम शांति।
यू आर वेलकम। ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से जिंदगी में अगर हम जैसा करते हैं, जैसा हम बीज बोते हैं, वैसा ही फल हम पाते हैं। हमने ये जाना कि अगर जिंदगी में कोई एक व्यक्ति जिस पर हमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट करने की जरूरत है वो कौन है। आपको बस अपने आप को आईने में देखने की जरूरत है। आप ही वो व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप खुद पर ट्रस्ट करें और साथ ही साथ उस ऊपर वाले पर ट्रस्ट करें, उसे अपने आप को सौंप दें, तो आप महसूस करेंगे कि जो जो बीज आपने बोए हैं उन सबको कब फल निकल कर आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो जर्नी इतनी इजी हो जाएगी कि आप उसके एंड पर खड़े रहकर शायद एक दिन बोलेंगे कि ये पेशेंस जो मैंने किया ये सही रंग लाया है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।